ओम शांति। स्वागत है आप सभी का बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब। भाई साहब आपका स्वागत है।
ओम शांति।
ओम शांति भाई साहब। भाई साहब, बाबा का ये यज्ञ बहुत अनोखा है। इस यज्ञ की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत अनोखी है। हम बाबा का जो परिवार है वो भी बहुत अनोखा है, और गवर्नमेंट जो बाबा की पांडव गवर्नमेंट है, जो उसकी मर्यादा नियम है, वो इस दुनिया के रीति रिवाज से थोड़ी भिन्न है। इस कारण से आज भी कई बार ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते कि ब्रह्मा कुमारीज कैसे वर्क करती हैं, क्या है। क्या इस कारण से कभी भी हमें सरकार की तरफ से कोई चैलेंज आया, जैसे धार्मिक संस्थाओं के लिए या इस प्रकार से कोई, क्या ऐसा कभी चैलेंज ये भी तो आया होगा?
ऐसा है कि ये जो कायदे कानून हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बातें हैं, ये बकायदा तौर पर लिखित के रूप में लॉ बने, कानून बने, रूल्स बने और उसको समाज में लागू किया जाए, ये काफ़ी बाद की बातें हैं। पहले समय में एक प्रकार की, जिसको कहते हैं ना, एथिक्स होता था, कुछ मॉरल वैल्यूज़ होते थे, और जो उस समय तो राजाओं का ही राज होता था, तो राजा ही उन नियमों को समझे बांधते थे, और राजा के अंदर ही आपको पता है कि न्याय करने की शक्ति, पावर भी उसके पास ही होती थी
जी।
तो वो उसको कहते हैं, उनकी अपनी अपनी मर्यादाएं थी, सर्वश्रेष्ठ मर्यादाएं जब नई दुनिया थी, सतयुग में वहाँ कोई लिखित में कानून की ज़रूरत ही नहीं थी, और जितना कानून कम लिखा होता है उतना उसको लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं
जी।
और लिख दो तो ऐसी कोई परफेक्ट भाषा तो होती नहीं, तो कुछ समय बाद उसमें कोई त्रुटि पाई जाएगी, फिर उसको अमेंड करेंगे, फिर उसके बाद भी फिर तो अमेंडमेंट को फिर अमेंड करेंगे। इस तरह से लॉ का सिस्टम चलता है। तो आज भी अगर आप देखें कि दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसीज हैं, उसमें इंग्लैंड जो है
जी,
बहुत प्रसिद्ध पुरानी डेमोक्रेसी है, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है ही नहीं।
ओके।
और देशों की जैसे भारत है, आजकल कॉन्स्टिट्यूशन को सब मान के उसके अनुसार सब चलते हैं, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है लिखित में, लेकिन उसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इतना शक्तिशाली है कि देखिए वो डेमोक्रेसी कितनी पुरानी है, और उससे कई देशों ने प्रेरणा ली है डेमोक्रेसी स्थापन करने की। तो इसलिए ये बात है। अब जहाँ तक हम ब्रह्मा कुमारीज हैं, तो हम तो मर्यादाएं जिसको कहते हैं
जी।
और ये ही मर्यादाएं सतयुग और त्रेता में चलती हैं। त्रेता युग यानी दुनिया के 1/4 दुनिया का गोला जो है, सृष्टि चक्र पूरा होने पर त्रेता आता है, और उसके महाराजन को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, राम जी को
जी।
मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादाओं पर ही आधारित होता है। तो हमारा जो भी नियमावली है, बहुत बड़ी संस्था है। आप सोचिए, मुझे याद है कि जब एक बात निकली थी कि हम अपने सारे देश विदेश के केंद्रों के लिए एक कॉमन कोड ऑफ कॉन्डक्ट या आचार संहिता बनाएं, हमें तो ज़रूरत नहीं, हमारा तो यज्ञ ठीक चलता है, लेकिन कभी कोई मीडिया वाले, कोई गवर्नमेंट वाले पूछते हैं आपकी नियमावली कहाँ, तो हम कह दें ये तो जवानी चलता है, तो उनको समझ में नहीं आएगा। है ना, तो जवानी में ट्रस्ट बहुत होता है, एक दूसरे पर फेथ होता है, कॉपरेशन होता है, उसमें कुछ लिखना पड़ता ही नहीं, हर एक सेवाधारी है तो उसने सेवा ही करनी है, इसलिए उसमें ये सेट करना वो करना, हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट भी नहीं होता, अपने आप अपनी कुशलता के अनुसार व्यक्ति अपने काम संभाल लेता, और ज़्यादातर सबको हर एक काम करने के लिए उसको शिक्षा मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम तो मर्यादाओं पर चलते हैं, लेकिन सरकार ने वैसे भी, सब दुनिया की सरकारों ने धार्मिक क्षेत्र जो है उसको छोड़ा हुआ है। कि धार्मिक क्षेत्र एक ऐसा है जो आस्था पर, जो निश्चय पर, विश्वास पर आधारित है, तो उनके लिए कानून बनाना बहुत मुश्किल है
जी।
क्योंकि भिन्न भिन्न आस्थाएँ हैं, भिन्न भिन्न तरीके हैं। अब इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कौन सा ऑल इंक्लूसिव कानून बनाए जिसमें सारी आस्थाएं विश्वास भी आ जाए। तो हमको जब कहा गया कि ऐसा कुछ बनाया जाए, हैं जी, अपने आपस में आपसी रिलेशन का, क्योंकि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने कंट्रीज हैं, सबके अपने अपने लॉ हैं। एक एक कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज हैं, पड़ोसी कंट्री, और उसमें भी लॉ में फ़र्क होता है, करेंसी में फ़र्क होता है। तो ऐसी पर हमको कहा गया, तो हमने इंक्वायरी किया कि दुनिया में आखिरकार बहुत सारे विदेश हैं, कोई ऐसा लॉ बना हुआ है जो किसी प्रकार का भी, जो सभी विदेशों पर लागू हो? तो ना आ गई, ऐसा कोई कानून नहीं बना। फिर भी हमने अपनी ईश्वरीय मर्यादाओं को आगे रख करके एक कॉमन लॉ बनाया, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत आसान था, चाहे इंडिया में हो, चाहे न्यूजीलैंड में हो, चाहे चिल्ली में हो, हमारी एक ही जैसी मर्यादाएं हैं। अच्छा, उसमें भाषा का तो सवाल ही नहीं। और आज की दुनिया में एक करेंसी नोट भी होगा तो उसमें भारत की कितनी 13 या कितनी भाषाओं में लिखा जाता है, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया। तो जब हमने वो लॉ बनाया, बहुत आपस में सब देशों के भाई बहन बड़े बड़े आके मिले, बहुत अच्छा लागू होता है, लेकिन हमने उसमें नीचे लिख दिया, अगर किसी भी देश के कानून के साथ हमारा ये लॉ क्लैश करता है तो देश का कानून पहले लागू होगा, ताकि उसमें किसी न किसी प्रकार का भी किसी चीज़ का भी उल्लंघन ना हो, क्योंकि हम लॉ ऑफ द लैंड को आज के दिन में, आज का जो लॉ है उसको प्राइम मानते हैं, यानी उसमें किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आज ब्रह्मा कुमारी भारत में देखो कितने प्रांत हैं, कितनी भाषाएं हैं, लेकिन हम लॉ ऑफ द लैंड को पहले फॉलो करते हैं। कई जगह कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट होती थी, कई जगह दूसरों की होती थी, कई प्रकार की पार्टियां, उनकी भी अपनी अपनी लीनिंग्स हैं, है ना, कोई बिल्कुल परमात्मा में विश्वास नहीं करते, कोई फिर एक बहुत कट्टरपंथी भी हैं। सब ने भारत पर राज किया, और भारत का तो अगर आप इतिहास देखें तो ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसने भारत पर राज ना किया हो। ये भी एक वंडरफुल बात है, टर्न बाय टर्न सब ने भारत पर राज किया, देवताओं ने भी किया, हिंदुओं ने भी किया, मुसलमानों ने भी किया, क्रिश्चियन ने भी किया, ये वंडर है ना। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का ये बेस है, तो इस प्रकार से सारी सिस्टम चलता है। हर देश की सरकारों ने धर्म को छूट दी हुई है। मान लो टैक्स है
जी,
तो जितनी धार्मिक संस्था हैं सबको टैक्स माफ़ है ना, लेकिन उनको अपने अकाउंट्स वगैरह ठीक रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि माफ़ है तो खुली छुट्टी है उल्टा सीधा करने की। तो इसी प्रकार से इंटरफेरेंस कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे लिखा गया है कि किसी के भी मान्यता विचार वो अपने अपने का पालन कर सकता है, उसमें सरकार किसी भी प्रकार का इंटर खुली आज़ादी दी हुई है, क्योंकि ये मामला ही फेथ का होता है। इस प्रकार से ये चलता है। फिर भी ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है
जी। तो ऐसा कभी हुआ था? ऐसा याद आता है कि शायद यूपी में कभी एक बार ऐसा हुआ था, जो गवर्नर ने बहुत सख्ती बरती थी धार्मिक संस्थाओं के ऊपर, तो उसके बारे में कुछ बताएं, क्या कारण रहा उसका?
उसमें ये है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर डॉक्टर चन्ना रेड्डी थे
जी
एक वक्त पर, और ये डॉक्टर चन्ना रेड्डी जो हैं ब्रह्मा कुमारी इसके साथ, तो मुझे याद है शायद 1960s में हमारा दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन में म्यूज़ियम बना था। साउथ एक्सटेंशन बहुत बहुत एडवांस्ड इलाका है, और उसमें उस समय ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होते थे, तो ये आए थे म्यूज़ियम की ओपनिंग करने, और ये अपने कच्छ में एक छोटा सा डंडा होता ना, वो हमेशा रखते थे।
अच्छा।
मुझे याद है कि वो उसी प्रकार से आए थे, और एक बहन थी उसने उनको समझाया था, और हमारी संस्था के साथ तो वो तब से लेकर टिल हिज एंड वो जुड़े रहे हैं, और भिन्न भिन्न कैपेसिटीज में जुड़े रहे हैं
साकार के टाइम से।
और वो बहुत सारे जो थे ना हमारे प्रांतों में भिन्न भिन्न पोस्ट पर रहे हैं, बहुत सारे प्रांतों में गवर्नर रहे हैं, चेन्नई जो मद्रास है वहाँ भी वो गवर्नर रहे हैं, तो अपने असूल के वो बहुत पक्के थे और खाने पीने में सात्विक थे। कहीं उसको उनको भोजन पर भी बुलाया जाए तो भोजन स्वीकार कर लेते थे, लेकिन अपना चावल वगैरह अलग से लाते थे, एंड में वो ज़रूर खाते थे।
अच्छा।
ऐसा हमने उनको देखा, लेकिन असूल के बहुत पक्के थे। मुझे याद है जब वो राजस्थान के गवर्नर थे, दो बारी बने वो राजस्थान के गवर्नर, तो जब माउंट आबू आए थे तो बाबा के आगमन था उस समय, आगे आगे बैठे थे, तो हमारे किसी भाई ने कहा पीछे मुड़कर देखिए। तो पीछे तो हमारा हॉल हजारों भाई बहनों से बड़ा पड़ा था, उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और उसके बाद जब उन्होंने स्पीच की तो कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अगले दरवाजे से आता हूँ, फ्रंट डोर से आता हूँ। कई लोग धार्मिक नेता धार्मिक संस्थाओं में आते हैं, बैक डोर से आते हैं। कहता वो चाहते हैं कि किसी को पता ना लगे मैं इस संस्था में आया हूँ, लेकिन मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, ये एक मैं उनकी बात सुना रहा हूँ। तो उन्होंने वास्तव में हमारे विद्यालय को एंड में बहुत हेल्प किया। हमने जो जिसको हम ज्ञान सरोवर कहते हैं माउंट आबू में, उसकी ज़मीन को हमने लिया था, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, उससे फिर डी एक्वायर करा कर चन्ना रेड्डी जी गवर्नर थे, और उस समय गवर्नर रूल हो गया पर चांस, नहीं तो चीफ मिनिस्टर का रूल होता, तो उन्होंने अपनी पावर से वो हमको दोबारा दिलवाई थी। बहुत सारी बातें, तो उस वक़्त वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे और ब्रह्मा कुमारी से भी उनका नॉर्मल अच्छा संबंध था। तो हुआ ये था कि उत्तर प्रदेश आप जानते हैं तीर्थों की नगरी है, अनेक तीर्थ हैं, अनेक वहाँ मठ आदि हैं,
मठ पंथ बहुत सारे हैं।
हाँ। तो जहाँ तक मुझे याद है बनारस के किसी मठाधीश ने बड़े वहाँ अनेक एस्टेब्लिश्ड मठ हैं, कुंभ का मेला जब लगता है तो उसकी प्रोटोकॉल होता है कि इस मठाधीश को आगे जाना है, इसको बहुत है
जी।
और खूब तीर्थों की नगरी है। तो बनारस के किसी मठाधीश ने उसके बेटे की शादी थी, उसने बहुत मशहूर था, उन्होंने इस गवर्नर जी को कहा कि आप हमारी शादी में पधारिए। तो वो चले गए। अच्छा, अब जब वो वहाँ गए तो उन्होंने क्या देखा, उस मठाधीश ने इतनी लेविश इतनी एक्स्ट्रावेगेंट शादी करी कि जैसे होता है ना धन लुटाते हैं, बाबा हमें बताया करते थे एक प्रिंस इंडिया का विदेश गया था और उसके बाप का जितना धन था वो पार्टीज में सोने के फूल बनवा के ऐसे डाला करता था, इस प्रकार का कुछ हुआ होगा, बहुत ज़्यादा लेविश खर्चा किया उसने। तो चन्ना रेड्डी जी के मन में आया कि धार्मिक संस्थाएं जो हैं इन पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए, गरीबों को खाना नहीं मिलता, हम लोग टैक्स लगाते हैं, और ये देखिए मठाधीश एक मठाधीश ऐसा है तो बाकियों के पास क्या होगा। उन्होंने लखनऊ आके मन में धार लिया कि कुछ कंट्रोल होना चाहिए, और भी उनको मिलाया गया पुजारियों से आदि, आरती उतरवा देते हैं बड़े लोगों की, आई डोंट नो। अब उन्होंने सोचा कि पहली बात यह है कि इनकी एसेट्स को क्या क्या इनके पास है, धन है, सोना है, मूर्तियां हैं, ये सारी एसेट्स की डिटेल मांगनी चाहिए धार्मिक संस्थाओं से ताकि पता लगे, रिकॉर्डेड हो, उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा देखा कि कई व्यक्ति अनपढ़ हैं लेकिन वो पुजारी बने हुए हैं, क्योंकि वो सारी उनकी जो फंक्शन था उसमें हज़ारों लोग आए हुए थे तरह तरह के, वो देख रहे थे, वाच कर रहे थे
जी।
तो उन्होंने सोचा कि पुजारियों आदि की भी कोई क्वालिफिकेशन हो, कुछ पढ़े लिखे हों, उनके कुछ ग्रेड्स हों और उनका बकायदा तौर पे पे स्केल हो, उनको किस कैसे तनख्वाह मिलनी है, इस तरह के रेगुलेशन का उन्होंने एक ऑर्डिनेंस बनाया। और उन दिनों जो था एमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी जी ने एमरजेंसी लगवाई हुई थी सारे देश में। तो एमरजेंसी में क्या होता है कि नॉर्मल लॉ तो सस्पेंड हो जाता
जी।
तो प्राइम मिनिस्टर ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट से पास करा के कोई भी लॉ लागू कर सकता सारे देश में, और उसके अगेंस्ट सुनवाई भी नहीं होती एमरजेंसी के अंदर। तो उन्होंने सोचा कि एमरजेंसी है, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अपॉइंट किया हुआ है, तो मैं क्यों ना जा करके ये काम करूं।
तो भाई साहब फिर उस जगह जाने का उन पे उल्टा प्रभाव पड़ गया और उन्होंने ये पूरा प्लानिंग
हाँ
कर ली।
उल्टा नहीं, मतलब उनका जो प्रभाव पड़ा किसी भी व्यक्ति पर पड़ सकता है।
जी
अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस प्रकार का शो करेगा, अपना धन लुटाएगा जो जायज़ नहीं है, आखिर मंदिरों का धन के लिए ट्रस्ट बने हुए हैं, बड़े
जी
बड़े सिस्टम बने हुए हैं कि मंदिरों में तो बहुत धन आता है, तो वो लोग कॉलेज खोलते हैं, वो कई मंदिरों के सैकड़ों कॉलेज हैं,
जी
हॉस्पिटल खोलते हैं, कोई सोशल सर्विस करते हैं, ऐसा होता।
और वैसे भी ये धन इस प्रकार से शादी पे लुटाने लायक तो होता
हाँ
भी
हाँ
नहीं
है
है।
ना, तो ये किसी पर्पस के लिए होता है ना। तो एक
जी
व्यक्ति उस धन को ट्रस्ट ना मान के अपना मान ले और उसको इस प्रकार से लुटाए तो हर एक का ख्याल चलता है। तो वो तो गवर्नर थे,
जी
उन्होंने सोचा हम इसको रेगुलेट करें।
तो क्या वो ऑर्डिनेंस ब्रह्मा कुमारी पे भी लागू हुआ?
नहीं, ऑर्डिनेंस उन्होंने बनाया
जी
और जब बनाया तो मीडिया में आ गया कि अब ऐसे होगा ऐसे होगा, पुजारियों को पढ़े लिखे होना पड़ेगा आदि, जो भी था कुछ न्यूज़ उसकी आ गई।
जी
तो सारे धार्मिक दुनिया में खलबली मच गई। तो बहुत से धर्म वाले जो थे वो लखनऊ में वो रहते थे तो आके उनको मिले, लेकिन और ब्रह्मा कुमारीज भी उसको जानती थी, तो ब्रह्मा कुमारीज के भी अपने नियम हैं। इस प्रकार के सख्त सरकारी नियम लागू नहीं होते, एक व्यक्ति MA पढ़ा हो या BA वही आकर के किसी चीज़ को संभाल सकता है,
जी
ये तो फेथ की बात है। फेथ वाले तो पढ़ाई छोड़कर फेथ में आ जाते हैं, जॉब छोड़कर फेथ में आ जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी में तो बहुत सारे लोग हैं, मैं भी अपना जॉब छोड़ के इसमें फुल टाइम लगा हूँ,
जी
तो इसलिए कोई गिने इसमें वो चाहिए होता है, ऐसा होता ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक हमारा भाई था, वो अपना जीवन आश्रम में बिताना चाहता था, तो दादी जी ने कहा कि भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, कुछ काम कर लो। उसने अपने सारे सर्टिफिकेट दादी जी के आगे ही फाड़ दिए, कहते ये लीजिए, और वो झाड़ू तक लगाता रहा।
जी
मेरे पास भेजा गया था तो मुझे बड़ी लज्जा आती थी कि पढ़ा लिखा भाई है, मैं उससे नहीं लगवाता था, लेबर संभाल लेगा, मतलब यहाँ तो निर्माणता काम करती है, तो
जी
और तरह के नियम हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज का ग्रुप भी उनसे मिलने गया, तो उन्होंने, क्योंकि वो अपनी बात पे पक्के थे, तो उन्होंने शिष्टाचार पर तौर पर सबसे मिल लिया, कि अपने कानून को बदलने का उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। अच्छा, अब हमारी माउंट आबू में मीटिंग हुई, हमारे तो हज़ारों सेवा केंद्र हैं,
जी
मठ पंथ तो दो दो चार उनके स्थान होते हैं, कईयों का तो एक ही होता है। अब हमने सोच, और टाइम लिमिट दी हुई थी उसमें, एक महीने के अंदर अंदर सारा डिटेल बना करके अपने बैंक अकाउंट ये वो, कोई भी तुम्हारी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, मूवेबल है, इमूवेबल है, दो। तो हमने आबू में मीटिंग की कि ये तो बड़ा कठिन काम है
जी
और सोचो क्या करना है। तो मैंने और हमारी दीदी मनमोहनी जी थे, मनमोहनी जी बहुत कट्टर विचार के थे, वो कहते थे संकल्प की शक्ति है, जो
जी
काम करते हैं तो कभी भी अपने संकल्प को हिलाना नहीं। शायद आपको याद होगा कि रामलीला ग्राउंड का जब हमने कहा था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था दूसरा स्थान देख लो, तो मैंने और मनमोहनी जी ने कहा कि हमने सोचना ही नहीं, दूसरा स्थान देखना तो क्या संकल्प से उड़ा देना, तो हमें सफलता मिली थी।
जी
वहाँ भी हमने ये इनिशिएट किया, सबने एग्री किया कि हमने इसके नियमावली को फॉलो नहीं करना, ना हम कर सकते हैं, और बड़ा कठिन काम है। हम धार्मिक अपना ईश्वरीय प्रचार करें स्पिरिचुअल, या बैठ के कागज़ भरें इस जगह पर इतने इतने इतनी एसेट्स हैं आदि आदि है।
जी
और हमारा तो सारा सारे इंडिया में छोटे बड़े गीता पाठशाला गिरो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बहनों को तो अकाउंट रखना भी नहीं आता है ना, वो किसी भाइयों से अकाउंट रखवाते हैं।
जी
तो ऐसे तो हमने फैसला कर लिया कि हम इसको नहीं करेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ, संकल्प किसी का होता है, पूरा परमात्मा किसी से करवाता है।
तो बाबा ने किसी को
हाँ
निमित्त बनाया
हाँ
इसके लिए?
तो ये है, तो यही बात है कि बाबा, हमने तो अपना निश्चय कर लिया, अब बाबा की मदद। तो ये जो जैनी लोग होते हैं,
जी
तो जैनियों के छोटे छोटी मूर्तियाँ प्योर गोल्ड की होती हैं। अच्छा, और वो बड़े धनवान होते हैं, गवर्नमेंट को भी जब कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो जैनी आगे आके बहुत धन देते हैं,
जी
कुदरती तौर पर उनको बहुत धन परमात्मा ने इस दुनिया में दिलवाया हुआ। तो जैनी लोग सीधा इंदिरा गांधी जी के पास गए, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी गोल्डन स्टैचूज हैं, मूर्तियां हैं, वो स्थापित हैं। अब वो कह रहे हैं कि मूर्ति को वजन करो, तो वजन करने के लिए तो मूर्ति को उठाना पड़ेगा
जी।
और वो हमारी स्थापित की हुई मूर्ति हम उठाएं तो मूर्ति खंडित हो जाती है। ये तो हमारी निष्ठा और आस्था के ऊपर बहुत बड़ी ठेस लगेगी, हम ये कर ही नहीं सकते, ना करेंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने सब सोच विचार के, वो दूरदर्शी थी और कभी भी अनरीजनेबल नहीं थी, उनमें ये खूबी थी। ऐसे हमारे रामलीला ग्राउंड में भी जब उन्होंने देखा कि देवियों की बहुत बड़ी मूर्तियां स्थापित हैं, और वैसे भी जो नेता होते हैं ना, ये सारे नेताओं के अंदर एक प्रकार की आस्था होती है कि धर्म धर्म वालों से आशीर्वाद लो। कई तो आप जानते हैं कि जब उनको अपना जॉब ओथ लेना होता है तो मुहूर्त निकलवा करके इस समय पर मैं ओथ लूँगा, ये ऑस्पिशियस है, यहाँ तक उनकी मान्यता होती है।
अच्छा।
तो वो सोचते हैं कि धर्म वालों को अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रकार का श्राप बन सकता है, ये भी उनके अंदर भय होता है। तो इसलिए उन्होंने फिर सारा ही ये जो ऑर्डिनेंस था, चेन्नई रेड्डी जी को कहा कि इतना सख्त ऑर्डिनेंस धर्म पर नहीं लगाना चाहिए, उन्होंने उसको लागू ही नहीं किया।
तो वो ऑर्डिनेंस फाइनली हुआ ही नहीं।
हम बच गए, मतलब ऑर्डिनेंस तक रहा लेकिन इंदिरा गांधी जी को उसे अप्रूव करना था तो उन्होंने किया ही नहीं, तो वैसे का वैसा ही चलता रहा।
तो इसका मतलब बाप दादा ने कहीं ना कहीं हमारा संकल्प शक्ति थी जिसने कि टच किया और एक पूरा सभी बाकी धर्म के द्वारा हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ा उसके अंदर, ना हमने शुरू किया उस चीज़ को, ना हमें उसको प्रोड्यूस करना पड़ा गवर्नमेंट के आगे।
बाबा हमको हमेशा कहते थे कि ईश्वरी मर्यादाएं जो होती हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज
जी,
और जब भी दुनिया की मर्यादाएं बीच में आएंगी परीक्षा बहुत होगी, क्योंकि दुनिया में राज्य सत्ता है उनके पास, आपके पास नहीं है, आपके पास धर्म सत्ता है, लेकिन धर्म सत्ता सदा राज्य सत्ता के ऊपर रही है। आप जानते हैं कॉरोनेशन होता है
जी,
तो क्राउन कौन पहनाता है? क्रिश्चियंस में पोप पहनाता है, है ना, राजा रानी को पोप पहनाता है। हमारे यहाँ भी धर्म गुरु होते थे जो कि ताज पहनाते थे। तो धर्म सत्ता सदा ऊपर रही है, इसलिए हम उसको अच्छी तरह पालन करते हैं और समझते हैं कि धर्म सत्ता है ऊपर, तो ऑटोमेटिकली कोई विधि निकल आएगी। परंतु हमें अगर कोई खुद ही कंप्रोमाइज़ कर ले, अच्छा जी हम ऐसे कर लेते हैं, तो फिर वो काम नहीं करता। तो सत्ता मैंने होता शक्ति
जी।
तो धर्म है, धर्म सत्ता साथ होगी तब वो काम करेगा। देखेंगे न राज सत्ता है न धर्म सत्ता, राज्य है सरकार है सत्ता नहीं है, और बिल्कुल फ्रीडम तो है ही नहीं। पार्लियामेंट के अंदर पोजीशन और अपोजिशन, आप राज्य कर रहे हैं आपके सामने आपका अपोजिशन बैठा है, ऐसा कभी हुआ है? इसका मतलब ये है, आज तो उसको जस्टिफाई करते हैं किसी तरीके से, प्रजा का प्रजा पर राज्य कहते हैं, हर एक को बराबर अधिकार है आदि आदि, लेकिन देखा जाए तो अपोजिशन तो उसमें कदम नहीं रखना चाहिए, आपकी राज्य सत्ता चल रही है, लेकिन आज ऐसी पद्धति बन गई है, इसको हम इम्पोर्टेंट समझते हैं और कहते हैं कहीं अपोजिशन ना हो तो लोग जो है जो सत्ता वाले हैं वो बहुत अन्याय कर देंगे, ऐसा भाव रखा जाता है। ये अपोजिशन ही है जो सत्ता वालों को विद इन लिमिट्स रखती है
जी।
आज की स्थिति में ये भी ठीक है।
तो ये सब बाप दादा जो है वो कहीं ना कहीं ज्ञान से और जो नई दुनिया में ये सब ठीक करने के लिए ही बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे इंसिडेंट हुआ, इसमें आपको बाप दादा की मदद, एक तो ये था कि बाप दादा ने किसी को निमित्त बनाया और उन्होंने जाकर के गवर्नमेंट के आगे अपनी बात रखी, जो कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाई, जिससे कि हमें इतना ज़्यादा रीवर्क करना पड़ता और बाकी सारी प्रॉब्लम्स आती। लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं चन्ना रेड्डी जी भी सेंसिटाइज्ड सोल थे, जो बाप दादा उसके मिले भी थे और माउंट आबू आए, धार्मिक थे, प्रिंसिपल्स के व्यक्ति थे। इस पूरे इंसिडेंट से भाई सब आपको बाबा की मदद कैसे कैसे महसूस हुई?
देखिए ऐसा है, कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा हो और अच्छे का ये गुण होता है कि उससे बुराई, अच्छी जगह पर बुराई नहीं देखी जाती
जी।
तो खास तौर पर धार्मिक क्षेत्र में, जिसमें सारे भारत की इतनी आस्था है, आप जानते हैं कि हमारे भारत में तो नदियों के नाम भी देवियों पर हैं
जी,
इतना नदियों के जल का भी मान है, अब भावना का भगवान फल देता है, वरना नदी के जल से शरीर धुल सकता है, आत्मा तो नहीं धुल सकती। अच्छा, शरीर भी आजकल नदियों का जल इतना पोल्यूटेड हो गया है, क्योंकि सारे नगरों का कचरा उसमें पड़ता है
जी,
कि वो लोग भावना अर्थ वहाँ नहाने जाते हैं, फिर घर आके दूसरे पानी से नहाते हैं, पर भावना है। तो ऐसे स्थानों पर वैल्यू अगर किसी चीज़ की लगाई जाती है, अगर किसी ऑर्डिनरी स्थान पर कोई दुराचार होता है तो दुराचार तो दुराचार ही है
जी।
लेकिन अगर किसी मंदिर में दुराचार हो जाए तो हज़ार गुना उसको बड़ा गुना गिना जाता है ना। उस हिसाब से दुनिया के लोग भी फजूल खर्ची करते हैं, लेकिन अगर किसी मंदिर का कोई धार्मिक संस्थान का हेड इस प्रकार की फजूल खर्ची करे जो दुनिया की भी फजूल खर्चियों से ऊपर चली जाए, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं आपको पता है, कई अमीर लोग हवाई जहाज़ में शादी करते हैं, कुछ समुंदर के नीचे जाके करते हैं, पैसा है तो पैसा लुटाते हैं जिसको कहते हैं, तो अगर वो करे तो नेचुरली ख्याल आता है, फिर वो गिनते हैं कि ये एक सैंपल है, एक मछली सारे तालाब को ख़राब कर देती है, वो समझते सारे ही ऐसा करते होंगे, तो उनके मन में बहुत बड़ा द्वंद्व चलता है और वो सोचते हैं कि इतना बड़ा देश है, हमें इसके लिए कितना धन चाहिए, हम कई तरीके से धन इकट्ठा करते हैं इसकी प्रगति के लिए, और क्यों ना इस धन को भी रेगुलेट करें, तो नेचुरल है ना। तो एक साधारण व्यक्ति और एक देश के हित देखने वाला व्यक्ति के अंदर ये ख्याल जागना नेचुरल है,
और कहीं ना कहीं आस्था पर भी ठेस पहुंचती है।
हाँ, कि देखो ऐसा हम भी वहाँ धन चढ़ाते हैं उसका ये हाल होता है, तो इसलिए उन्होंने ये किया। बाकी ये है, बाबा से मिलने तो बाद में आए थे जब राजस्थान के बने, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग हमने ये देखा है, हमने ये सीखा है कि अच्छा मार्ग जो होता है उसके रास्ते में रुकावट ज़रूर आती है, लेकिन उसका रास्ता उसको मिल जाता है। जैसे कहते हैं ना, सत्य की नाव डोलती है पर डूबती नहीं, तो डूबती नहीं पर ये भी है ना, डोलती तो है ना, इसलिए सच की वैल्यूज़ को भी टेस्ट किया जाता है कि सचमुच ये सत्य है या कन्वीनियंस है, सब साधन मौजूद हैं इसलिए सत्य पर चल रहे हैं। अगर आपसे कोई साधन छीन लिया जाए, कोई फैसिलिटी आपको ना मिले और आप सत्य का मार्ग छोड़ दें, तो आप सच्चे सत्य मार्ग पर तो नहीं चल रहे ना, इस प्रकार की परीक्षाएं आती हैं।
जी भाई साहब, और आपने कहा सच की नाव में कम से कम हिलना तो होगा ही, डूबेगी नहीं, या यूँ कहें कि जो सच की नाव होती है कई बार उसको ही ज़्यादा हिलाया जाता है देखने के लिए कि ये सच है भी या नहीं। जो झूठा है उसका तो प्रत्यक्ष ही है, उसको कभी कोई टेस्ट करेगा भी नहीं। तो भाई साहब, हमने आपके आज के इस मदद की जो आपने हमें बात बताई बाप दादा की, कहीं ना कहीं ये बात मन में आती है कि बाप दादा ने हमें जो एक ईश्वरीय नियम बना के दिया है, मर्यादा बना के दी है, कभी भी उसके कारण से हमें दुनिया के नीचे, दुनिया के सामने नीचा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वो ईश्वरीय मर्यादाओं में त्याग है, उन ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर स्पष्टता है, मन वचन कर्म की शुद्धि है, और हमें बाप दादा ने हर विकार को त्यागने की जो बात कही है, जिसको दुनिया में भी भले वो फंसे हुए हैं लेकिन मानते गलत वो भी हैं उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं बाप दादा ने हमें ये सब बातें जो बताई हैं जीवन में हमारे हैं, जिसको हमें एफर्टलेसली हम जीते हैं, तो उस आधार से हमें बाप दादा की मदद मिलती भी रहती है और दुनिया के भी ऐसे टेस्ट में हम पास हो सकते
और
हैं,
और इससे हमारा निश्चय जो है और भी दृढ़ होता है, क्योंकि निश्चय एक बड़ी फ्लिकरी चीज़ है, निश्चय बढ़ता भी है लेकिन ज़रा सा भी, कुछ ज़रा सा भी, मामूली सा भी टेस्ट आ जाए तो निश्चय हिलना लगना शुरू हो जाता है। रामलीला मैदान वाले में भी हमने देखा, एक तरफ पूरी सरकार है और पूरी सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा अतिथि रशिया का प्रेसिडेंट आ रहा है, और जिससे रशिया से इंडिया उस वक्त वीट मंगवाता था, चावल मंगवाता था, तो उसके लिए रिसेप्शन के लिए ग्राउंड, और ब्रह्मा कुमारी ने वही लिया हुआ ग्राउंड, तो दोनों के अंदर देखा जाए तो पूरा, वो भी मजबूर थे लेकिन ब्रह्मा कुमारी की वो जो साधना थी उसको देखते देखते वो जीत हो गई, तो सारे अखबारों में फर्स्ट फ्रंट पेज पर फर्स्ट न्यूज़ आ गई कि इनकी विजय। और इसी प्रकार के यहाँ भी गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट ने सबके लिए लॉ पास किया, ठीक है हम पर वो लॉ लागू भी नहीं होता, ना हम कोई इस प्रकार की गलत काम करते हैं, ना हम कोई सोने को होल्ड करते हैं या इस तरह का, हम तो इकोनॉमिकल है, हमारा इकोनॉमी हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है
जी,
इकोनॉमी और इकोनॉमी, हम तो संकल्प की भी इकोनॉमी करते हैं, तो हमारे यहाँ वो एक्स्ट्रा वर्जेंस कहाँ से मिलेगी। लेकिन जब लॉ पास होता है तो सबके लिए होता है, टेस्ट यही होता है, मान लो अर्थक्वेक आएगा तो क्या ब्रह्मा कुमारी इसके लिए नहीं आएगा, टेस्ट ये होता है कि उसको हमने कैसे पास किया। तो उसमें बाबा ने कहा एक वक्त तो हमने तो अपने मन में धार लिया, लेकिन अब वो धारणा को इम्प्लीमेंट कैसे हो, तो परमात्मा अन्य के द्वारा भी उसको इम्प्लीमेंट करवा के आपके नियम को रखता है।
तो हमारा रिएक्शन उस समय बिल्कुल निश्चय वाला था।
हाँ बिल्कुल, कि हमने ये नहीं करना।
थैंक यू भाई साहब, इन सब बातों से हमारा भी निश्चय कहीं ना कहीं बहुत दृढ़ होता है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, हमने जो पथ चुना है, हमें उस पर निश्चित आगे बढ़ते रहना है। परीक्षाएं आएंगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी को बाप दादा निमित्त बना करके हमें उन परीक्षाओं से पार भी लेके जाएंगे। तो इसी के साथ आज आपका भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और फिर मिलेंगे कुछ नई यादें लेकर के बाप दादा की मदद की। तब तक के लिए ओम शांति।